ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 28 अप्रैल 1968। ये स्कूल अथवा पाठशाला है और किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला है। ये तो जरूर है, आत्मा शरीर बगैर कुछ सुन नहीं सकती है। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए कि आत्मा शरीर बगैर तो समझ नहीं सकती। तो फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। अभी जीवात्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है ये आत्माओं की पाठशाला। और यहाँ परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। वो है जिस्मानी पढ़ाई और ये है रूहानी पढ़ाई, जो कि बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। तो ये हो गई गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसलिए भगवान वाच है, परंतु ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, ये तो पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ते हैं वो कोई भक्ति है क्या? भक्ति मंदिर टिकाने आदि में होती है और पाठशाला में होती है पढ़ाई। तो ये पाठशाला है और पढ़ाते कौन है? भगवान वाच। और कोई पाठशाला में भगवान वाच नहीं कहा जाता, सिर्फ ये एक ही जगह है जहां भगवान वाच है। ऊंच ते ऊंच भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो ही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी तो जो भी सभी भक्ति मार्ग में है वो है भक्ति। और भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि भक्ति दुर्गति है, फिर मुझे आकर के सदगति पढ़ा करके देनी पड़ती है। गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा, और वो आकर के क्या पढ़ाते हैं? आकर के राजयोग पढ़ाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई कॉलेज में भगवान वाच नहीं है। भारती है जहां शिव जयंती मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तब होती है जब पहले शरीर में प्रवेश करते हैं। कोई का भी जन्मदिन होता है बाद में, पहले तो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है ना। तो बाप कहते हैं मैं गर्भ में कभी प्रवेश नहीं करता हूं। तुम सभी गर्भ में प्रवेश करते हो और 84 जन्म लेते हो गर्भ से। सबसे जास्ती 84 जन्म यह लेते हैं जिन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। 84 जन्म लेकर फिर छावरा गांवरे का छोड़ा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो वा राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन में। और जब लम जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, इसको बैकुंठ कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यही लेते हैं। श्याम सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। ये कृष्ण सभी को प्यारा लगता है। कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनः जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पड़ते हैं, पति तो बन जाते हैं, फिर पतित तो पावन, पतित श्याम, पावन सुंदर। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से पावन बनते हैं और काम शिक्षा पर बैठने से पतित बनते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सभी काम शिक्षा पर बैठ काले हो गए। इस काम चिता पर बैठ जलने से काले हो जाते हैं ना, इनको कहा जाता है काम अग्नि। जिस अग्नि में जलते रहते हैं और जलते जलते श्याम हो जाते हैं, फिर सुंदर बनना है। तो ये सारा खेल ऐसा ही बना हुआ है। भारत पहले पहले है सतोप्रधान अर्थात सुंदर, फिर अभी काला हो गया है। बाप कहते हैं इतनी सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, 500-700 करोड़ आत्माएं सभी काम चिता पर बैठ करके जल करके काले हो गए। मैं आकर के सभी को वापस ले जाता हूं। ये षष्ठ चक्र ही ऐसा है, फूलों का बगीचा सो फिर कांटों का जंगल बन जाता है। जंगल को बगीचा नहीं कहा जाता है, जंगल में तो जानवर जैसे कि एप्स रहते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अभी फिर वैसे बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, ये 84 जन्म भोग अभी फिर ऐसे बन रहे, अर्थात इनों की आत्मा ऐसी बन रही है। आत्मा अभी पढ़ रही है, ये कोई भक्ति नहीं है, पढ़ाई है। भक्ति से तो पूरी दुर्गति हो जाती है, और तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है तो तुम्हारी सबसे जास्ती दुर्गति हुई है। शुरू में भक्ति तुम ही करते हो, सतोप्रधान भक्ति करते हो, बाद में तमोप्रधान भक्ति भी तुम ही करते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, वाम मार्ग कहा जाता है विकारी मार्ग को। इतने जन्म पवित्र मार्ग में थे, इतने जन्म अपवित्र, तो वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, और सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, वो कब राजयोग नहीं सिखला सकते। वो तो सुख को कागविष्ठा समान समझते हैं। तुम कहते हो ये सुख है मनुष्यों को कागविष्ठा समान, अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। सतयुग में तो तुमको इतना अपार सुख मिलता है जो बाप को भी याद करने की दरकार नहीं रहती। गायन भी है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सब करें न कोई। किसका सुमिरन? बाप का सुमिरन। इतने सभी को थोड़े ही सुमिरन करना है। देवताएं तो कितने ढेर हैं, भक्ति मार्ग में कितने सुमिरन करते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। कृष्ण कब आया, वो कौन है, कुछ भी पता नहीं। कृष्ण और नारायण में भी भेद क्या है ये भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचे, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उन ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहते हैं कि बाप को याद करो, उनको देवता कहा जाता है। अट्ठाईस अप्रैल सन 68 की वाणी का दूसरा पेज। यहाँ के जंगली लोग तो सभी को भगवान कह देते हैं, कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ये सर्वव्यापी तो माया के 5 विकार हैं, एक एक के अंदर माया के 5 विकार हैं। मैं तो एक व्यापी हूँ परंतु उसे एक में भी माया के 5 विकार व्यापक हैं। सत्यगु में तो कोई विकार नहीं होता, मुक्तिधाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की वहां कोई बात ही नहीं। तो ये रचयिता ही आकर के अपना परिचय देते हैं, रचना के आदि मध्यंत का राज भी समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं। जो जानते हैं वो आस्तिक हैं, जो नहीं जानते हैं वो नास्तिक। बाकी दुनिया में तो सभी नास्तिक ही नास्तिक हैं। तुम भी एक ही बार आस्तिक बनते हो, ये तुम्हारा देवताओं का जीवन बनता है उत्तम, गया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है। वास्तव में दुर्लभ मनुष्य जीवन तो ये संगम युग में है, जबकि तुम मनु की संतान बनते हो। मनु अर्थात ब्रह्मा, अभी तुम्हारा कौड़ी जैसा जीवन है, फिर हीरे जैसा हो जाता है, और ये बात भी तुम की तुम्हारी बुद्धि में है। कलयुग के अंत में है कौड़ी जैसा जीवन, और फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर हीरे जैसा जीवन बनता है। इन लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा जीवन वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो देवताएं हैं, तुम तो ब्राह्मण बनते हो, और ब्राह्मण तो भगवान बाप को पहचानते हैं। तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है और तुम ही ईश्वरीय संतान हो। या तुम कहते हो हम ईश्वर के संतान हैं, ये दैवी संतान है। कौन किनको दैवी संतान कहें, किनको ईश्वरीय संतान कहें? पहले पहले दैवी संतान कौन है? सतयुग के लक्ष्मी नारायण को कहेंगे ये पहले पहले दैवी संतान है, और उनको जन्म देने वाले ईश्वरीय संतान है। तो यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान है, तुम डायरेक्ट नरसिंह नारायण बनते हो, कहते हो ईश्वर हमारा बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखाते हैं। गीता में जो भगवान वाच है वो तो भगवान वाच ही रंग हो गया, क्योंकि नाम कृष्ण का डाल दिया। कृष्ण का नाम डालने से गीता को बिल्कुल ही खंडन कर दिया है, उसमें नाम होना चाहिए शिव बाप का, बाप के बदली फिर नाम दे दिया है पतित को, पावन जिसको बनाते हैं उनका। तो बात ही बदल जाती है। तुम कहेंगे ये तो कृष्ण की आत्मा की बात है। अरे कृष्ण तो सतयुग में था, फिर तो उनका नाम रूप सभी बदल जाता है। उन्होंने नाम कृष्ण भगवान लिख दिया है, वास्तव में कृष्ण तो होता है बैकुंठ में। वहां ये राज्य कहां से आया? ये तो सभी नई बातें हैं। ये ज्ञान एक ही बार मनुष्यों को मिलता है। जो पास्ट हुआ द्वापर से कलयुग तक, वो सभी भक्ति है। ज्ञान तो तुमको एक ही बार मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये है उत्तम से उत्तम बनने का युग, ये कलयुग और सतयुग के बीच का युग है, जिसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तो जैसे समझो कि सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, सब कब्र दाखिल है, सभी का विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अभी तुम बच्चों को कोई से भी संबंध रखना नहीं है। गीत भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतकाल में अगर शिव बाबा को सुमरे तो नारायण की तरह बल बल अवतरे राजा ही कुल में, सिवाय भगवान के और कोई को याद किया तो बल बल मनुष्य जू में अवतरे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी समझने की है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, सीढ़ी में लगा हुआ है। हम तो देवता थे, फिर हम तो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। ये अक्षर है ना, ये निशानी दी हुई है। ये रावण राज्य है, इनको शैतानी राज्य भी कहा जाता है। जो भी शास्त्र सिखलाने वाले हैं वो सब दुर्गति को पाते हैं। कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ही गुरु है, फिर पति को छोड़ निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों को क्यों गुरु अपनाती है? निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी जो अपनी स्त्री को छोड़ करके विधवा बनाए देते हैं, बच्चों को आर्फन बनाए देते हैं, ऐसे को फिर गुरु बनाने से क्या फायदा होगा? उनसे तुमको दीक्षा लेनी होगी। कफनी पहन माथा मुड़ाकर सन्यासी बनो, तब तुम उनके फॉलोअर्स कहे जाओ। कहलावे सन्यासी का फॉलोअर और कहे रहे गृहस्थ में, तो फिर फॉलोअर कैसे ठहरा? ये सभी नॉनसेंस बातें, कुछ भी अकल नहीं है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि। तो क्या ये गुरु लोग तुमको पारस बुद्धि बनावेंगे? वो तो प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं, इनका तो धर्म ही अलग है। अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म भूल गए और धर्मों में फंस पड़े हैं। नाम कह दिया हिंदू धर्म, अब ये हिंदू धर्म तो है ही नहीं। ये तो हिंदुस्तान का नाम है, परंतु इतने पत्थर बुद्धि है, बंदर बुद्धि बन गए, कुछ भी समझते नहीं। रावण बुद्धि भी इनको कह सकते हैं, और कहते भी कौन है? भगवान वाच, भगवान कहते हैं ये सभी जंगली जानवर बंदर बन गए। अभी हमने इन बंदरों की सेना ली है, ये सारी दुनिया लंका है रावण की, रावण का राज्य है। बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। ये रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से, जब रजोगुणी होते हैं तो रावण राज्य शुरू होता है। बाकी सब भक्ति मार्ग के गपोड़े, बात समझाते हैं तुम कितने गपोड़ा सुनते आए हो। कहते हैं कल्प लाखों वर्ष का, मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानी कर देते, अपने लिए तो 84 लाख जन्म कहते हैं और मुझे तो कण कण भित्तर भित्तर में ठोंक दिया है। 28 अप्रैल 1968 की वाणी का 3रा पेज। ऐसे कहने वाले अपकारी मेरी निंदा करने वाले हैं, ऐसी निंदा करने कराने वालों पर भी मैं उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं इसमें तुम्हारा दोष नहीं, ये तो ड्रामा का खेल बना हुआ है, इस खेल को समझना है। सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक ये ड्रामा बना हुआ है और ये चक्र चक्र फिरता ही रहता है, ये सिवाय बाप के और कोई समझाए भी नहीं सकता। ये बाप है सभी आत्माओं का बाप, वो आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं, गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सत्युग में होगा दैवी परिवार, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है ईश्वरीय परिवार। बाप संभालते भी हैं, नहीं तो ईश्वरीय परिवार कैसे कहा जाए। पढ़ाते भी हैं, फिर गुलगुल बना करके साथ में ले जावेंगे, डर्टी ब्रूट से देवता बनाए देते हैं। डर्टी ब्रूट को असुर डेविल कहा जाता है। सभी हैं आसुरी संप्रदाय और सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। फिर बाप आकर आसुरी से दैवी संतान बनाते हैं, दैवी संप्रदाय बनते हो। अभी तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है मानुष से देवता की एक करतन लागी बार, इसलिए इनको जादूगर कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाने में कितना टाइम लगता है, है? ब्रह्मा को, ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य है ना, दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य से देवता बनने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है तो जादू हुआ ना। नरक को स्वर्ग बनाना ये जादू का खेल है, बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। क्या कि नर जो कुछ करता है वो नरक बनता है और स्वस्थिति में सदैव रहने वाला जो कुछ करता है उसे स्वर्ग बनता है। स्वर्ग को नरक बनने में 84 जन्म, फिर नरक से स्वर्ग बनने में 1 सेकंड लगता है। सिर्फ निश्चय बुद्धि बनने की बात है, अटल निश्चय बुद्धि बन जाए तो फिर क्या, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को भी जान लिया, बाप को भी जान लिया, और तो कोई ये नहीं जानते कि आत्मा क्या चीज है। तुम 100% देवता बुद्धि थे, अभी फिर 100% डफर बुद्धि बन पड़े। भगवान वाच, इन सन्यासियों आदि जिनको पूजते हैं सभी हिरण्यकश्यप जैसे डफर बुद्धि हैं, और तुमको भी डफर बुद्धि बनाई दिया है। अनेक गुरु है ना, सदगुरु तो एक ही होता है, कहते भी हैं सदगुरु अकाल, उसको काल खाते कोई देख नहीं पाता। परमपिता परमात्मा एक ही गुरु है, परंतु वो गुरु तो कितने ढेर हैं। और सभी विकारी हैं। निर्विकारी तो कोई है ही नहीं। कहेंगे सन्यासी हैं, नहीं, जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं। उनका जन्म भी तो भ्रष्टाचार से ही होता है। सत्युग में रावण राज्य, वहां तो रावण राज्य नहीं होता है, पांच विकार ही नहीं होते हैं। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी जीवन। इन देवताओं की सिवाय और कोई को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहा जाता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है संपूर्ण निर्विकारियों की। वहां यथा राजा तथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। तुम बच्चे यहाँ राजाई की पढ़ाई पढ़ते हो, तुम हो ही राजयोगी। तुम राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो, वो है हद के सन्यासी, हठ योगी। पहले तो उन्हें में भी ताकत थी, क्योंकि जंगलों में रहते थे। अभी वो ताकत नहीं है, शहरों में घुस पड़े हैं। अभी तो जंगल में रह भी नहीं सकते। विधवा आर्फन बनाने वाले सन्यासियों को फिर भी जाकर के चेले बनते, उनके चेले बनते हैं, उनके पांव धो करके पीते हैं, उनको भगवान गुरु समझ करके पूजते हैं। कहां सदगुरु एक जो सर्व की सदगति करने वाला है, और कहां ये अनेक गुरु। ये तो तुम्हारी दुर्गति करते हैं। मैं तो सभी को सदगति करके सबको सुखी सुखी बनाता हूं। मुझे ही कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। मैं घड़ी घड़ी ही शरीर छोड़ता और लेता नहीं हूं। मुझे कोई काल नहीं खाता है। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पति से पावन बनती है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। ऐसी ऐसी बातें गुरु लोगों ने बताई दी, बताए बताए कर दुर्गति की तरफ ले जाते हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। खुद कहते हैं हमने 12 गुरु किए हैं, और वो सभी निवृत्ति मार्ग वाले। ड्रामा का राज भी बाप ने बताई दिया। रचयिता की रचना के आदि मध्य अंत को नॉलेज बाप आ करके बताते। कोई भी मनुष्य ये नॉलेज समझा ही नहीं सकता। वही ज्ञान का सागर बाप है। वही तुमको मनुष्य देवता बनाने वाला है। डबल सिर ताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अभी तुम हीरे की जैसी चमक वाले बनते हो। तुम्हारी बुद्धि में हीरे की तरह ज्ञान चमचमाता रहता है। भले दुनिया में अंधकार हो जाता है, परंतु तुम हीरे के मिसल चमचमाते रहते हो। बाप ने मंत्र का भी अर्थ समझाया है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कह देते हैं सो हम, अर्थ लगाते हैं सो भगवान सो हम भगवान। बाप कहते हैं ये कितना जंगलीपना है। हम आत्मा सो परमात्मा फिर कैसे बन सकता है। बाप तुमको समझाते हैं तुम आत्मा इस समय सो ब्राह्मण बन रहे हो, फिर हम आत्मा ब्राह्मण से देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र फिर ब्राह्मण बनेंगे। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है, और ये तुम्हारा ईश्वरीय घर है, ऊंचते ऊंच परिवार है। तो तुम किसके पास बैठे हो, माता पिता के पास बैठे हो, सभी आपस में भाई भाई हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं कि तुम सभी हमारे बच्चे हो और वर्षे के हकदार हो। अज्ञान काल में कन्या को वर्षा नहीं मिलता है, यहाँ तो तुम सभी आत्मे मेरे बच्चे हो, सबको मेरे से वर्षा मिलता है। इसलिए परमात्मा बाप से हरेक वर्षा ले सकते हो, बूढ़े छोटे बड़े सभी को हक है बाप से वर्षा लेने का। इसलिए बच्चों को भी सिखलाओ, समझाओ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसा करेंगे तो पाप कट जाएंगे। 28 4 68 वाणी का चौथा पेज। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है, वो तो जैसे इडियट कांटे बन करके बैठे हैं। ये भी बच्चों को समझाया है, द्वापर से ही रावण राज्य शुरू होता है, तब बाप मार्ग में जाते हैं। वो ही निर्विकारी देवता थे, फिर विकारी बन जाते, देवता ही फिर विकार में जाते हैं। उन विकार में जाने वाले देवताओं की निशानियां जगन्नाथ मंदिर में बनी हुई है। वो बाम मार्ग के चित्र हैं, उनको देख करके पतित मनुष्य कहते हैं देवताएं है, तो विकार में जाते हैं। निशानियां हैं पर इसका अर्थ तो समझते ही नहीं है। वही देवताएं वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। ऐसे बहुत जगह छींची चित्र रखे हुए। कल तुम भक्ति करते थे, आज नहीं करते हो। अभी तो तुमको बाप से वर्षा लेना। रावण से आधा कल्प तुमको साफ मिला है। पुनर्जन्म लेते लेते तुम्हारा ये हाल हुआ है। भारत सारा ही श्रापित हो गया है। रावण श्राप देते हैं, राम वर्षा देते हैं। ये खेल ही इस समय वर्षे का है और श्राप का है। रावण राज्य में तुम सीढ़ी गिरते हो, राम आकर फिर तुमको वर देते हैं देवता बनने के लिए। तो रावण राज्य और राम राज्य, रावण राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता है, राम राज्य को घोर सोझरा कहा जाता है। चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। इसलिए शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में आते हैं और सोझरा हो जाता है। कृष्ण की जयंती कही जाती है, कृष्ण की जयंती होती है तो अमृत वेला हो जाती है। शिवरात्रि है कोई जानते भी नहीं। बाप कहते हैं ये तो घोर अंधियारा है, अर्थात द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। फिर घोर अंधियारे में मैं आता हूँ घोर सोझरा करने के लिए। अज्ञान अंधेर विनाश हो जाता है। भक्ति मार्ग में दर दर भटकने का कितना होता है। गीता के रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाई। दिखाते हैं पिछाड़ी में 4 पांडव बचे, वो भी पहाड़ आदि में जाकर के गल मरे, प्रलय हो गई। ये सभी है मनुष्यों की बनाई हुई भक्ति मार्ग की शास्त्र। ऐसा कुछ होता नहीं है कि सृष्टि खलास हो जावे। मैं तुमको इन सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वास्तव में सुधरे हुए मनुष्यों में 5 पांडवों की गति रीति बताई है। दुनिया में 10 धर्म है, 10 धर्मों में से 5 धर्म है सुधरने योग्य और 5 धर्म है अनसुधरेले। सूर्यवंश, चंद्रवंश, बौद्धि और सन्यासी और सिख, ये सुधरने योग्य जातियां हैं। इन धर्मवंशियों को, इन अवलावलम धर्मवंशावलियों को सुधरने का मौका मिलता है, भगवान आकर के सुधारते हैं। तो ये कैटेगरी दिखाई गई, युधिष्ठिर जैसी आत्माओं की कैटेगरी, भीम जैसी आत्माओं की कैटेगरी, अर्जुन जैसी आत्माओं की कैटेगरी, पांच प्रकार के सुधरने योग्य मनुष्य हैं। भक्ति मार्ग में तो देखो कितना भटकाते हैं। मैं तुमको इन वेद शास्त्रों आदि का सार समझाता हूं, नहीं तो ये दुर्गति में ले जाने वाले शास्त्र हैं और सभी झूठे हैं। झूठी माया, झूठी काया, पांच विकार ही झूठा बनाते हैं। यहां तक कि तुम्हारी आत्मा भी झूठी बन जाती है। साधु संताजी कुछ भी कहेंगे तो बोलेंगे झूठ। सत्य बतलाने वाला तो सदगुरु एक ही है, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ, सत्य की रत्ती नहीं। सदगुरु आधा कल्प के लिए तुम्हें राज्य देकर के जाते, झूठे गुरु सभी गवाही देते हैं। फिर ऐसा गुरु करने से फायदा ही क्या जो सब कुछ गवाही देवे, तो एक को याद करना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप आवेंगे तो हम सभी को त्याग करके एक आपके बनेंगे। तो अभी बाप मिला है तो और किसको भी याद नहीं करो, अपन को आत्मा समझो, जो बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। मूल बात है ही याद की। अंतकाल में शरीर या कोई भी संबंधी धन दौलत आदि याद आती है तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। काशी करवट भी बनारस में जाकर के खाते हैं, अभी वो बंद कर दिए हैं। तुमने भी तो काशी करवट खाया है ना। शिव बाबा के बने हो तो भक्ति मार्ग में भी समझते हैं हम शिव बाबा के बन जावे, इसलिए काशी करवट दिखाई है। भक्ति मार्ग ऐसे जब काशी करवट खा करके शरीर छोड़ते हैं तो उनके सभी पाप कट जाते हैं। सारी भोगना आदि भोग लेते हैं पूर्व जन्मों की, पापों का खाता सारा चुकुतु हो जाता है सजा खा करके, फिर भी भगवान तो उनको मिला नहीं, इसलिए वापस कोई नहीं जा सकता। तो ये ड्रामा बना हुआ है, वापस जाने ले जाने वाला तो एक ही बाप है, वापस कोई जा ही नहीं सकता। भले कोई क्या भी करे, न मोक्ष को पा सकते हैं न वापस जा सकते हैं, कायदा ही नहीं है। जब ड्रामा का चक्कर पूरा होता है तब मैं आता हूं, नहीं तो कितनी ही बार काशी करवट खाते रहे मैं तो नहीं आता। जब ऊपर से सभी आवेंगे तो मैं भी आऊंगा, जब ऊपर से सभी आ जावेंगे तो विनाश हो जावेगा, फिर मैं भी जाऊंगा, तुम भी जावेंगे। बाकी पहाड़ पर पांडव गल मरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो पहाड़ ऊंची स्टेज की निशानी दिखाई जाती है। गल मरे अर्थात देवहन को गलाने की बात है। बाकी मर गए, खलास हो गए, ये कोई बात नहीं, वो तो आप घात हो जाता है। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सन्यासी साधुओं आदि के संग में बिल्कुल ही तमोप्रधान बन पड़े, बुद्धि चलती नहीं है, गुरुओं को याद करते रहते हैं, गुरुओं का लाकेट पहनते रहते हैं। अब जिनका लाकेट पहनेंगे, जिनको याद करेंगे, तो बुद्धि भी कैसी बन जाएगी? वैसी ही बुद्धि बन जाएगी। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या करते हैं? हैं? मुरली में तो बोला हुआ है ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, फिर भी ब्रह्मा का फोटो रख। अरे ब्रह्मा का छोड़ो, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी फोटो रख लेते। अब उनकी बुद्धि तो चलती नहीं, जड़ बुद्धि हो पड़े हैं। ऐसों को याद करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि का हाल क्या होगा? पतित मनुष्य पतित गुरुओं को याद करते हैं तो क्या होगा? पतित पतितों को दान करेंगे तो क्या होगा? पावन बनेंगे कि पतित बनेंगे? पतित ही बनते जाते हैं, पावन तो कोई बन ही नहीं सकता। तुम जानते हो सर्व की सदगति दाता तो एक ही है, फिर सर्व की दुर्गति दाता तो अनेक हो गए। स्त्री का पति भी गुरु कहते हैं, स्त्रियां निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों को गुरु क्यों करती हैं? घोर अंधेरा है, इसलिए भगवान वाचे मैं आता हूँ, जिनका साधु नाम है उनका भी मुझे उद्धार करना होता है। इस समय सारी दुनिया में सब पतित हैं, साधु संत महात्मा विद्वान पंडित आचार्य सभी का उद्धार मुझे करना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्कार। जब हमें पता पड़ गया कि हम राधा कृष्ण जैसी आत्माओं को जन्म देने वाले हैं, हम रचयिता हैं, तो हमें ये देखना एक सुधरेगा तब हम सुधरेंगे। उस बच्चे को सुधारने का प्रयत्न करना है, योग बल की ताकत देनी है, अमृत वेले बैठ करके हम धूनी रमा दें। वो तो भक्ति मार्ग में ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, वो चिल्लाते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अरे दूसरा कौन दान दे, तुम खुद बैठ जाओ ना। ये कौन चिल्लाते हैं? अरे देन दान देने के लिए कौन चिल्लाते हैं? हाँ, बंगी चांडाल। तो हमें दूसरों से कहना है तुम दान दो, हैं? दूसरों को देने की अपेक्षा करनी है या देने लग पड़ना है? अभी तो देने लग पड़ने का समान है। और
मात्रों में 35 फुट गिफ्ट आया है, 35 फुट गणना किया है, फुट माने तरह की
है,
फुट माने तरह भी होता है,
फुट माने
तरह प्रकार
नहीं
आया, जैसे 11 अश्विनी 11 रुपये हो गए, 12 सूर्य हो गए और 8 वसु हो गए, जो अश्विनी तुम्हारे 35 है,
तो
सातों में यही क्या है?
हाँ तो उनके फॉलोअर्स हैं, सब सारी प्रजा है कि सारे राजा हैं? कि राजाएं थोड़े हैं और उनको फॉलो करने वाले प्रजा बहुत है, तो 33 करोड़ों में प्रजा भी तो है, तो प्रजा मिला करके है। हाँ जी, और जोर से बोलो। प्रश्न चित्त नहीं बनना है, प्रसन्न चित्त बनना है, लेकिन कहने से थोड़ा ही आएगा, अंदर से प्रश्न आएगा तो उसको दबा के रख देंगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? हैं? नुकसान होगा। लेटरिन आए और कोई दबा के रख दे तो अंदर कचरा बढ़ता जाएगा, बीमारी बढ़ेगी या बीमारी खत्म हो जाएगी? बढ़ेगी बीमारी। इसलिए प्रश्न न आना तो अच्छी बात है, सदैव प्रसन्न चित्त रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को प्रश्न आता है खुदा न खास्ता, तो उस प्रश्न को अंदर दबोच नहीं देना है कि अरे हम तो सबके सामने नीचे साबित हो जाएंगे, हम विधर्मी साबित हो जाएंगे, दूसरे धर्म की आत्मा साबित हो जाएंगे। नहीं, जो भी कचरा अंदर आया है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। और जब बाबा खुद कचरा लेने के लिए आया हुआ है, अपना सारा कचरा मुझे दे दो, और 84 जन्मों में कहीं नहीं मिलेगा जो भरी सभा में कहे कि अपना कचरा मुझे दे दो। अपने प्रश्नों का समाधान मेरे को दे दो, मैं कर दूंगा। वो गुरु लोग तो डरते हैं कहीं ऐसा प्रश्न कर दे जो मैं जवाब न दे सकूं। पता नहीं मैंने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। हैं?
इसलिए तो जवाब करने के लिए जो है
मना कर। हाँ जी, ये तो ये तो बाप बच्चों का परिवार है, ये स्कूल का स्कूल भी है और घर का घर भी है। घर में बच्चे और बाप क्या आपस में वार्तालाप नहीं करते? प्रश्न पूछते नहीं है क्या? पूछते हैं, जवाब भी मिलता है।
बाबा एक मंदिर में आ रहे हैं जो एक महीने क्लास न करे उसको दोबारा फिर भर्ती करना पड़े।
मुरली में आया है
क्लास एक महीने।
बाबा ने ये बोला है कोई बच्चा दो महीने तक अगर चिट्ठी भी नहीं लिखता है, बाबा से कोई कनेक्शन नहीं है उसका, क्लास भी नहीं करता है, क्लास का हाजिरी रजिस्टर भी बाबा के पास नहीं पहुंचता है, तो बाबा समझते हैं वो बच्चा क्या हुआ है, मर गया। जब मर गया तो फिर उसे दोबारा भर्ती भी करनी पड़े, दोबारा जिंदा होना पड़े, ज्ञान की संजीवनी बूटी लेनी पड़े। और
बाबा दोबारा मैंने भर्ती किया तभी भी ज्ञान नहीं आता है।
ऐसी आत्माएं बहुत होती है जो एक बार कन्वर्ट होती है। क्या 63 जन्मों में एक बार कन्वर्ट नहीं होती है? एक बार कन्वर्ट हुई फिर अपने धर्म में आ गई, फिर दूसरी बार कन्वर्ट हो गई दूसरे धर्म में, फिर तीसरी बार कन्वर्ट हो गई। है
बराबर कर।
हाँ तो क्या हुआ?
ज्ञान आना चाहिए।
ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान ज्ञान माने क्या? यहाँ बैठे कैसे हैं अगर ज्ञान नहीं है तो? आपके अंदर बाप की पहचान नहीं है तो यहाँ कैसे बैठ गए? पहचान है तो ज्ञान है। ज्ञान माने जानकारी। किसकी जानकारी? मुख्य जानकारी जानकारी किसकी होनी चाहिए? बाप की जानकारी। एक एक जानकारी में दुनिया की सारी जानकारी भरी हुई, और कुछ करने की दरकार नहीं है, सेवा भी नहीं करो, ज्ञान सुनना सुनाना भी बंद, पवित्रता की धारणा भी भले न करो, लेकिन सिर्फ एक याद में डटे रहो तो क्या रिजल्ट आवेगा? याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास कहा जाएगा, और याद में फेल और सब सब्जेक्ट में पास हो गया तो भी क्या कहा जाएगा? फेल का फेल रह जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि ज्ञान नहीं है। बूढ़ी माताएं होती हैं, सारी जिंदगी बाल बच्चे पैदा करते करते सारी बुद्धि घिस गई, घर घर के चौके में चूल्हे चौके में उनमें कोई ज्ञान बैठता ही नहीं, सिर्फ एक बात बैठती है बाबा की याद, बाबा की पहचान हो जाती है, बाबा कहते हैं अंत में उनमें भी ज्ञान आ जाएगा, गारंटी है। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताओं में भी ज्ञान आ जाएगा, वो भी बड़ी पब्लिक में बड़े मजमे में दूसरों को ज्ञान सुनाएंगी। ज्ञान इमर्ज हो जाएगा।
शंकर पार्वती का परिचय पढ़ करते हैं गणेश जी बात।
हाँ जी,
हो जाएगा
बाबा। इतना दिन से बीमार पड़ी हूँ, एक बार दूसरा पता मारे तो क्या वर्ती करना पड़े?
بابا تو مرلی میں کہتے ہیں کہ 106 ڈگری بخار ہے تو بھی کلاس کرنے جانا چاہیے، مرلی سننا چاہیے. آپ بیماری کی بات کر رہے ہیں، 106 ڈگری بخار 2 سال تک چڑھا رہتا ہے کیا؟ سیدھی سی بات ہے، کہاں چلے جاتے؟ جتنی بھی سمسیاں برہمن جیون میں پیدا ہوتی ہیں، ان سب سمسیاؤں کا سمادھان روز کی مرلی سے ملتا رہتا ہے، لیکن دھیان نہیں دیتے ہیں، اس لیے کوئی سمادھان بدھی میں بیٹھتا ہی نہیں، کوئی سے پوچھنے کی درکار نہیں. صرف روز کی مرلی کو ہم دھیان سے سنتے رہیں اور اپنا سمادھان نکالتے رہیں، سب باتوں کا سمادھان ملتا ہے. امرت ویلے کی یاد میں رہیں گے تو ڈبل سمادھان مل جائے گا. اب کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تو بابا کیا کرے گا؟
تو
ٹک جاؤ نا. بھائی کا پرشن ہے، اگر ہم بیج روپ اسٹیج میں ٹک جائیں گے تو ہمارا منن چنتن منتھن بھی بند ہو جائے گا، تو ہم کو تو بہت گھاٹا ہو جائے گا. گھاٹا ہو جائے گا یا فائدہ ہوتا چلا جائے گا؟ گھاٹا ہو جائے گا. ارے فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا. ٹک کے سدا کال ٹک کے تو دیکھو.
ہم سنکر جائیں گے تو سب چیزیں چھوٹ جائے گا، ایک کے یاد میں ٹک جائیں گے.
ہاں اس لیے اچھے کے لیے پریاس کرنا چاہیے. یاد اچھی یا گیان کا منن چنتن منتھن کرنا اچھا؟ یاد اچھی ہے.
آنکھوں میں جیان کی جوتی ہے نا بھرا ہوا، کوئی اسکول
جوتی
کی تو بات ہے.
ہاں جی ٹھیک ہے. ارے ایک بات تو ان کی پوری ہونے دو. ہاں
جیان کی جوتی ہے آسمان.
ہاں ہاں
تو کون سے پرکاش کی ہم
بھکتی مارگ میں، بھکتی مارگ میں تو استھول بندو اور ٹیکا لگا لیتے ہیں. یہاں استھول بندو اور ٹیکا لگانے کی بات نہیں ہے، یہاں کیا بات ہے؟ من بدھی میں وہ اسٹار یاد بنا رہے. میں آتما ہوں، میں جوت بندو ہوں، میں اسٹار ہوں. اسٹار دیکھنے میں آئے ہر سمے، وہ ٹمٹماتا ہوا دیکھنے میں آئے، جیسے کوئی باپ اپنے بلایت میں بیٹھے بچے کو یاد کرتا ہے، یہاں اس کا روپ سروپ سامنے آ جاتا ہے. ایسے ہی آتما اسٹار بھرکوٹی کے مدھیے میں چمچماتا ہوا ستارہ یاد رہنا چاہیے. یہ آدھا گیان ہوا اپن کو آتما سمجھنا، ابھی پوری بات تو سمجھے ہی نہیں. دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ اپن کو آتما سمجھ، باپ کو یاد کرنا، تب ہوا پورا گیان کی جوتی. آتمک استھتی میں تو ابراہیم بھی ٹک جائے گا. بدھ کرائسٹ گرو نانک جتنے بھی دواپر یوگ سے آتے ہیں وہ سب آتمک استھتی میں ٹکیں گے، لیکن باپ کو نہیں مانیں گے. اس لیے وہ ستیوگ تریتا کا پرارب کیا نہیں پراپت کریں گے. संकल्प नहीं है वो, प्रैक्टिकल अनुभव है. दूसरे को देखें तो हमें स्टार दिखाई पड़े, सुंदर चेहरा नहीं दिखाई पड़े. सुंदर चेहरा हमको आकर्षित न कर पाए, प्रभावित न हो. है बिंदु की याद माने मैंने संकल्प.
میرے
हाँ चेहरा आए तो बाप का याद आए, दूसरा नहीं। जो संपूर्ण पुरुषार्थी है वो ही याद आए, कोई अपूर्ण चेहरा याद ना आए। जैसे को याद करेंगे वैसे वैसे ही बनेंगे। और हैं, जोर से बोलो ना, लड़ाई लड़ते हैं तो खूब जोर की आवाज जाती है। हाँ बोलो। हाँ 2500 वर्ष। हाँ 2500 वर्ष कृष्ण का नाम पड़ता है, लेकिन 2500 वर्ष कृष्ण का नाम नहीं पड़ता है। पहले गीता भी निराकारवादी थी, बाद में उसका नाम कृष्ण का नाम डाला गया। जैसे कि हमारी शूटिंग पीरियड में होता है, क्या ब्रह्मा बाबा का नाम मुरलियों में बाद में डाला गया या पहले से ही पड़ा हुआ है? पिताश्री नाम बाद में डाला गया। ऐसे ही द्वापर युग के एकदम आदमी कृष्ण का नाम गीता में नहीं था, ये बाद में जो कृष्ण उपासक हैं, कृष्ण को महत्व देने वाले हैं साकार को, उन्होंने नाम डाला। हाँ जी, अठारह अध्याय तो बन गया, गीता तो बन गई, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं बना जो दूसरों का कल्याण हो जाए। जब तक मनन चिंतन मंथन ना हो तो ज्ञान जैसे अधूरा है, जड़ है जड़। किसी ने ज्ञान सुन लिया और दूसरों को सुना दिया, लेकिन न समझा और न दूसरों को समझाया, तो उससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं हो सकता। फिर तीसरी से स्टेप भी है,
ज्ञान में आएगा, घंटी के लिए।
हाँ तो दोबारा जन्म लेकर के एडवांस में आ जाएगा। थोड़ा भी अगर ज्ञान सुना है, दूसरों को सुनाया है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो दोबारा जन्म लेकर के एडवांस में आ ही जाएगा। अपना शरीर लेकर के एडवांस में नहीं आएगा तो दूसरे में प्रवेश करके आएगा। ये सुना हुआ ज्ञान भी अमृत है। और
बाबा एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। जिससे महाभारत का लड़ाई हुआ था उसके सब वीर मर गए, अर्जुन खड़े
सब कहाँ मर गए?
जब लड़ाई हुआ,
अरे पांडव तो बचे रहे।
सब वीर मरे
हैं?
सब वीर मरे, अर्जुन खड़े
सब कहाँ मर गए? पांडव तो पांच बचे रहे, कुत्ता भी बच गया। कौन सी किताब में पढ़ के आ गए? और कभी तो अनेक हुए, ढेर के ढेर हुए। कोई की पांडवों से लड़ाई हो गई, उन्होंने सब पांडव मर गए, ऐसा लिख दिया होगा? कसाई को से पड्डा थोड़े ही मर जाता है। अरे पंडा की औलाद पांडव सब कैसे मर जाएंगे? उनमें भी कम से कम युधिष्ठिर जैसे जो युद्ध में आदि से लेकर के अंत तक स्थिर रहने वाले हैं, वो कैसे मर जाएंगे? और
बाबा, जब परमात्मा को याद करते हैं तो ध्यान मिलता है, कुछ संकल्प ऐसी ध्यान
में। उस समय ध्यान में आना चाहिए कि हम क्राइस्ट की औलाद नहीं है, हम इब्राहिम या मुसलमानों की औलाद नहीं है, बौद्धियों की औलाद नहीं है। वो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, हम तो पुनर्जन्म नाम मानने वाले ब्राह्मण हैं। हमने पुनर्जन्म कितने लिए हैं? 84। उनमें 63 जन्मों की रील घूम रही है, अच्छे कर्मों की रील जब घूमती है तो हमारा ध्यान नहीं टूटता है, और जब बुरे कर्मों की रील घूमती है तो हमारे ध्यान को बार बार तोड़ती है। ये ध्यान करना चाहिए। इसलिए बुरे कर्मों की रील घूम रही है तो हम और पक्का कर दें, और तीखा पुरुषार्थ करें। सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है। ऐसे नहीं कि हम हमेशा हारते ही चले जाएंगे, जीतने का भी हमारा टाइम आएगा। हम संकल्पों के ऊपर कंट्रोल भी कर लेंगे, जीत भी जाएंगे। इसलिए और पुरुषार्थ को तीखा करना है। और अरे रावण राज्य भले दुनिया में फैला रहे, हमारे ऊपर किसका राज्य है? वो तो हम झांक के देखें। हैं? अरे दुनिया में भले किसी का बर्याद चल रहा है, लेकिन हमारे ऊपर राज्य किसका चल रहा है? हम अपने अंदर तो झांक के देखें, कहीं कोई संबंधी का प्रभाव तो हमारे ऊपर नहीं है? संबंधी के प्रभाव में तो हम नहीं चल रहे हैं? या कोई गुरु गुरुडम का प्रभाव तो नहीं है हमारे ऊपर? हमारे ऊपर बाप का प्रभाव है। हम बाप के राज्य में है या नहीं है? जैसे बाप चलाना चाहता है हम वैसे ही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? कहीं विरोधी संकल्प बाप के प्रति तो नहीं चलते हैं? राजा की प्रजा होगी तो राजा के कंट्रोल में चलना पड़ेगा, या कंट्रोल से बाहर रहकर कोई प्रजा चल सकती है? हैं? कंट्रोल में चलना पड़े। हाँ जी,
बहुत ही जब पहले दुर्गा माँ की आराधना करते थे और हम श्री बाबा को याद करते परमात्मा को, नाराज हो गए
हैं? तो दुर्गा माता नाराज हो जाएगी? अभी अभी दुर्गा माता है कोई? पहले मानते थे, लेकिन अभी तो बुद्धि में बैठ गया कि अभी इस दुनिया में कोई देवी देवता है? आप बताइए, जो आपने ज्ञान लिया है उस ज्ञान के अनुसार क्या बुद्धि में बैठा है अभी दुनिया में कोई देवी देवताएं हैं? अभी जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। इस दुनिया में कोई देवी देवताएं हैं कि सब विकारी असुर हैं? बोलो। अच्छा, तुमने एक दो चार अभी निर्विकारी देवता भी देख लिए? जब देखे ही नहीं तो मानते क्यों हो? और हाथ उठाओ।
चल रहे हैं।
हाँ जी,
लौकी जी तो बच्चा है, तो बच्ची को वजह से परिवारों में थोड़ा विवाद हो गया था, तो लोग टेंशन ज्यादा लिए
हैं,
ज्यादा टेंशन लिए, देख करके चलते हैं, ज्ञान को भी अब ऊपर ज्यादा चलन करते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा हम भी कार्रवाई कर दिए, वो लोग भी कार्रवाई किए थे हमको, तो हमारा फिर वहाँ घर को लगता नहीं है, क्या करें उधर, उसको बेच के हटा दें वहाँ से, चले दूसरे जगह कहीं कि वहीं पर रहें।
तुम्हारे में इतनी ताकत है
कि हम यहीं रहूं, चले जाऊं?
तुम्हारे में इतनी ताकत है कि घर परिवार को संभालते हुए बगुलों के बीच में से हट सकते हो? क्योंकि मुरली में बोला है हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। इतनी अगर शक्ति है, इतना अगर त्याग है, इतना अगर वैराग आ गया है पक्का पक्का, तो अलग हो जाने में हर्जा क्या है?
तो अलग तो है,
है?
अलग है, लेकिन मतलब घर हमारा जो है उन्हीं को बीच में है, घर वहाँ से हटा दो फिर चुके।
अच्छा, दूसरी जगह जाएंगे वहाँ विरोध करने वाले पैदा नहीं होंगे?
हो जाएंगे।
फिर
संकल्प आता हम जहाँ जाएंगे अगर ब्राह्मण होगा तो वहाँ पर भी होगा,
तो फिर
तो सब शाम को ही रहना है।
तो अच्छी बात है ना, मुकाबला करो जहाँ हो, जमीन जायदाद बेचोगे वो सस्ते में जाएगी, दूसरी जगह खरीदोगे वो कास्टली मिलेगी, तो घाटा किसको होगा? अपन को ही घाटा हो जाएगा।
बाबा जी अगर हम लोग
बहुत बुरा मानते हैं, बुरा मानने वालों को मानने दो, उससे क्या होता, कसाई को से पड्डा मर जाएगा क्या? अरे कसाई कोसेगा, कसाई गालियां देगा तो कसाई के गालियां देने से हमारा पड्डा पड़िया मर जाएगा क्या? हंसी उड़ाने दो, अपने मुंह से हंसी उड़ाते हैं, गालियां देते हैं, ग्लानी करते हैं, हमको चिपक जाती है क्या? हाँ तो आपके लिए है, आप मानो, हमारे लिए नहीं है। हम तो एक भगवान को मानते हैं, तो हम भगवान को मानते हैं। तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। वो सब भावना की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। विश्वासम फलदायकम हो जाता है थोड़े समय के लिए।
लेकिन ये जान लीजिए कि वो जो भगवान ने कहा है कि मोहम्मद साहब जो है मुसलमान याद करते हैं।
हाँ जी, तो अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए ना। और हाँ जी ब्रह्मा जगदम्बा नहीं है, ब्रह्मा और जगदम्बा अलग अलग है क्या? ठीक है,
पावन बोला जो ब्रह्मा के हजार जगदम्बा बनने वाली,
जगदम्बा खड़ी हुई है, जिसका टाइटल जगदम्बा है, उपाधि है, वो खड़ी हुई है, और उसकी कोई बच्चा उंगली पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, तो ये कहेगा कि जगदम्बा को मैंने नहीं पकड़ा। किसको पकड़ा? जगदम्बा को ही पकड़ा। अब चाहे उंगली हो और चाहे वो सहयोग करने वाली भुजा हो, है तो जगदम्बा ही। जगदम्बा की इच्छा के बगैर वो भुजा नहीं चल सकती। उंगली भी चलेगी तो किसकी इच्छा से चलेगी? जगदम्बा की इच्छा से चलेगी।
लेकिन बाबा ने बोला हजार भुजा वाली बनने वाली आपकी मान है।
हाँ,
ब्रह्मा
जगदम्बा नहीं है, मुरली में बोला है ये ब्रह्मा वास्तव में जगदम्बा नहीं है, जगदम्बा वास्तव में कोई और है। जगदम्बा स्त्री होती है या पुरुष दाढ़ी मूछ वाला होता है? वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा ये ब्रह्मा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कोई उसको जगदम्बा नहीं मानेगा। कोई मानता है दाढ़ी मूछ वाले को? इसलिए वही पुरुष चोलाधारी ब्रह्मा जब शरीर छोड़ करके कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है, तब जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा ही जगदम्बा है। ब्रह्मा अगर जगदम्बा होता तो मम्मा को जगदम्बा बनाने की टाइटल देने की, सरस्वती बनाने की टाइटल देने की क्या जरूरत थी? और
बाबा
हैं?
हैं? सांप मर गया अपन लाश में।
क्या बोला?
सांप मर जाए अपन लाश में।
हाँ, हाँ, सांप मर जाए पर लाठी न टूटे। लाठ माने लाठी। हाँ, उसका मतलब ये हुआ कि जो बाहुबल चलाने वाले हैं वो बाहुबल का उपयोग न करें। बाहुबल का उपयोग करे बगैर अगर हमारा काम चल जाता है तो लाठी चलाने की क्या दरकार है, बाहुबल चलाने की क्या दरकार है। जैसे शंकर जी ने किया, शंकर जी ने वरदान तो दे दिया भस्मासुर को, लेकिन वो उन्हीं के पीछे पड़ गया। भस्मासुर शंकर जी के पीछे पड़ गया, हम तुम्हीं को मार देंगे, तुम्हारे ही सर के ऊपर हाथ धर देते हैं। तो शंकर जी सारी दुनिया में दौड़े दौड़े फिरते रहे, लेकिन उसकी हिंसा नहीं की। कृष्ण को भगवान कहा जाता है, लेकिन कृष्ण ने सीधा सीधा कंस का मुकाबला नहीं किया। गांवों गांवों में भागते भागते फिरते रहे। राम ने भी जंगल जंगल की खाक छान दी, जंगलों में रहे, लेकिन रावण के साथ मुकाबला नहीं किया। ये तो शास्त्र में झूठी बातें दिखा दी हैं कि बाण मारे, त्रिशूल मारे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये युक्ति है, न सांप मरे और न लाठी टूटे। उन आत्माओं का भी कोई अकल्याण न हो, कोई झगड़ा टंटा भी न हो, और बाहुबल चलाने की भी दरकार न पड़े। भगवान आकर के कोई इस दुनिया में हिंसा करेगा क्या? हिंसा तो 2500 वर्ष में राजाओं ने की है, मनुष्य आत्माओं ने हिंसा की है। हिंसा के बल पर अहिंसक राज्य स्थापन नहीं हो सकता। बाप तो आकर के अहिंसक राज्य स्थापन करते हैं, तो हिंसा के द्वारा कैसे अहिंसक राज्य स्थापन होगा? कीचड़ से कैसे कीचड़ साफ होगा कपड़े का? हाँ, युक्ति निकाली जाती है।
बाबा, कोई सूर्य वाले देवता होते हैं?
हैं?
सूर्य दिखाया गया है भगवान को।
सूर्य वाले कोई देवता नहीं होते हैं। घोड़े के मुंह वाला कोई भगवान नहीं होता है। पूंछड़ी वाला कोई भगवान नहीं होता है। ये तो मनुष्यों के रूप दिखाए गए हैं, पुरुषार्थी रूप। जानवर जैसा पुरुषार्थ किया है, परिपूर्ण पुरुषार्थ नहीं किया है नारायण का, तो ऐसा ऐसा रूप बन गया है। इसलिए सीढ़ी के चित्र में हनुमान हो या गणेश हो, उनकी पूजा कौन से युग में दिखाई गई? है कलयुग में दिखाई गई, द्वापर के आदि में नहीं दिखाई गई। क्योंकि द्वापर के आदि में तो सिर्फ एक ही संपन्न रूप होता है, या तो शंकर या तो नारायण। ओम शांति।